रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक और खास सेहत से जुड़े हुए टॉपिक पर। जी हाँ, और वो टॉपिक है पैरालिसिस। और पैरालिसिस के बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद डॉक्टर के मिश्रा। सो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM।
दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा विषय उठाया है। ये समाज में इस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और मैं चाहूँगा कि तुम्हारे माध्यम से आज मिलकर हम अपने श्रोताओं को समझाएं कि पैरालिसिस या फालिश जिसको कहा जाता है, या कुछ लोग इसको अधरंग भी बोलते हैं, कैसे ये बीमारी का नाम हुआ। अध माने आधा और अंग माने शरीर का आधा अंग, और एक आदमी का एक हाथ और एक पैर नहीं उठता है तो उसको अधरंग कहा जाता है। उर्दू में इसको फालिश कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको पैरालिसिस कहा जाता है। देखो, ये एक सिम्टम का ग्रुप होता है। पैरालिसिस एज सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी आदमी की एक हाथ या एक पैर नहीं उठ रहा है, अब उसकी वजह कोई भी हो सकती है।
जी जी,
कई बार बुखार के बाद में ऐसा हो जाता है, वो पैरालिसिस डिफरेंट है उस पैरालिसिस की जो कि शुगर की वजह से हो जाती है।
जी।
या कई लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है दीक्षा, और उसके बाद में हाथ और पैर नहीं उठता है।
जी जी,
वो पैरालिसिस फर्क है जिसके बुखार के बाद में हाथ और पैर नहीं उठता है।
जी जी,
आज तुम्हारे माध्यम से मैं यही अपने श्रोताओं को समझाना चाहूंगा कि इन दो पैरालिसिस में अंतर है, और ये दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं।
जी,
ऐसा नहीं है कि किसी को पैरालिसिस या अधरंग हो गया है तो बस हमें उसको डिमिट कर देना चाहिए कि अब ये मर जाएगा, ऐसा नहीं है।
जी जी,
अपने श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि कई बार शुगर बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसका हाथ नहीं उठता है, लेकिन अगर हम उसका ब्लड प्रेशर ठीक कर लें, उसको दवाई दें, तो वही आदमी 5-7 दिन के बाद में फिर से चलने लगता है।
जी जी,
इट इज ए परफेक्टली ट्रीटेबल डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत अच्छे से उपचार हो सकता है
जी,
अगर हम उसकी वजह को डायग्नोज कर लें। और उसके लिए हम चाहेंगे ये कि आप लोग डॉक्टर के पास समय पर जाएं। अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ खून टेस्ट कराने हैं तो तुरंत कराएं। अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीटी स्कैन कराना है, दीक्षा सीटी स्कैन एक थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है, 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं, तो कई लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि साहब बिना सीटी स्कैन के इलाज कर दीजिए। अपने श्रोताओं को मैं ये समझाना चाहूँगा कि सीटी स्कैन के बिना इलाज करना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है।
जी,
तो अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कोई टेस्ट कराने हैं तो आपको जरूर करा लेने चाहिए।
जी बिल्कुल, यानी टेस्ट की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, अपने शरीर के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। और पैरालिसिस क्या काफी अलग अलग बीमारियों से बच के रहा जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। चल रही है कुछ खास बातें पैरालिसिस के बारे में। जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसके घर वाले, और उन्हें लगता है कि जिंदगी शायद रुक सी गई है। जिंदगी कहीं ना कहीं कुछ ठहर सी जाती है, लेकिन वापस मिल भी सकती है अगर सही तरीके से इलाज किया जाए। क्यों होता है पैरालिसिस और किस तरीके से इससे बचा जाए, आइए जानते हैं डॉक्टर के मिश्रा से, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद। डॉक्टर मिश्रा, पैरालिसिस होने के क्या क्या कारण होते हैं? जैसे आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, या फिर आपने कहा है कि कई बार ब्रेन हैमरेज की वजह से, क्लॉटिंग की वजह से भी हो जाता है, इसके अलावा भी क्या क्या कारण है?
इसमें दीक्षा, मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा, जब भी नाड़ियों में खून का बहाव रुक जाए
जी,
वो किसी भी वजह से हो, तो उसको पैरालिसिस हो जाएगी।
जी,
अब इसमें देखो एक चीज समझने की है कि अगर नाड़ी सिकुड़ जाए
जी,
जैसा कि अक्सर ब्लड प्रेशर में होता है या डायबिटीज में होता है कि नाड़ी सिकुड़ गई है, तो भी पैरालिसिस हो जाएगा।
जी जी,
समझना ये है कि देखो अभी ब्लड में कोई फर्क नहीं आया, मैं नाड़ी की दीवार की बात कर रहा हूँ, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन या नैरोइंग ऑफ द डायमीटर, इसलिए ब्लड नहीं पहुंच रहा है।
जी जी,
ये एक तकलीफ हो गई। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तो आर्टरीज सिकुड़ जाती है, नाड़ी सिकुड़ गई तो ब्लड नहीं पहुंच रहा है दिमाग को।
जी,
लेकिन अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मान लीजिए खून गाढ़ा हो गया, नाड़ी अपनी जगह में सही है
जी,
लेकिन खून गाढ़ा हो गया है, तो भी ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, तो भी उसको पैरालिसिस हो जाएगी
जी।
तीसरी चीज, अगर उस ब्लड में कोई ऐसी चीज बह रही है जैसे अल्कोहल बह रहा है
जी जी,
या कुछ कीटाणु बह रहे हैं, कई लोगों को बुखार के बाद में पैरालिसिस हो जाती
जी जी जी,
उसको डॉक्टरी भाषा में सेप्टिसीमिया बोलते हैं या बैक्टीरीमिया बोलते हैं। बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो गए हैं खून में कि उन्होंने एक क्लॉट बना दिया
जी जी,
उन्होंने जाकर आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। अब देखो आर्टरी अपनी जगह सही है, खून भी जो बह रहा है वो सही है, लेकिन वो बैक्टीरिया का एक क्लॉट बन गया है, उसने जाकर एक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया
जी,
तो फिर ब्रेन में पैरालिसिस हो जाती है
जी जी।
तो पैरालिसिस इन तीनों वजह से हो सकती है, अगर आर्टरी सिकुड़ जाए डायबिटीज हाइपरटेंशन एंजाइना, या खून गाढ़ा हो जाए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एलडीएल वीएलडीएल, या खून में क्लॉटिंग हो जाए, क्लॉट्स बन जाते हैं, क्लॉट्स बैक्टीरिया वायरस फंगस किसी भी चीज से बन सकते हैं
जी जी।
तो कोई भी वजह हो जो हमारे खून के दौरे को रोक देती है वो पैरालिसिस करेगी
जी।
इसीलिए हमने देखा होगा, आप लोग भी समाज में देखते हैं दीक्षा, कि जिनको शुगर होती है उनको पैरालिसिस होता है
जी जी।
जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको पैरालिसिस होता है, कई बार बुखार इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि बुखार दिमाग में चढ़ गया
जी जी।
दिमाग में क्या चढ़ जाता है, इतना ज्यादा खून गर्म हो जाता है कि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है
जी जी,
रेड ब्लड सेल्स मरने लगते हैं और वो एक क्लॉट बना देते हैं
जी जी।
हमारे रेड ब्लड सेल्स 98 बॉडी टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं
जी,
लेकिन जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता गया 104 106 107 तो ब्लड ही क्लॉट करने लगता है
जी जी।
और ये एक भगवान की मिथ्या है देखो दीक्षा, कि वही खून जो जीवन दायिनी है जो हमारा जीवन चलाता है
जी जी,
104 105 टेम्परेचर के बाद में वही खून हमारी जान ले लेता है
जी जी,
क्योंकि क्लॉटिंग हो गई
जी जी बिल्कुल।
इसलिए बुखार को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए
जी जी, यानी हल्का सा भी बुखार हो तो उसको बिल्कुल आप इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी एडवाइस और ट्रीटमेंट जब तक नहीं लेंगे शायद कोई भी छोटी सी बीमारी बड़ी हो सकती है। और पैरालिसिस के बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहें तो जरूर SMS या कॉल के जरिए पूछिए अपने सवाल 8010781078 पर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM और आप हैं मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ, चल रही हैं कुछ खास बातें जुड़ी हुई आप ही की सेहत से, और हम बात करें हैं पैरालिसिस के बारे में, यानी एक ऐसी परेशानी, एक ऐसा डिसऑर्डर जो किसी को भी हो सकता है। बहुत सारी वजह है पैरालिसिस की, लेकिन एक आम रीजन है पैरालिसिस होने का और वो है ब्लड में क्लॉटिंग। बहुत सारी बातें जारी हैं पैरालिसिस के बारे में और डॉक्टर के मिश्रा सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने बताया कि ब्लड में क्लॉटिंग होना, यानी ब्लड जो है वो किसी भी शरीर के अंग में अगर वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, आपकी नाड़ियों में क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहां पर पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पर पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुगर के मरीज को आपने कहा है कि बहुत ज्यादा देखा गया है केसेस, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को देखा गया है, लेकिन इसके अलावा क्या किसी उम्र के बच्चे को भी पैरालिसिस अटैक हो सकते हैं, या फिर कोई और व्यक्ति जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है ऐसे किसी व्यक्ति को भी हो सकता है पैरालिसिस?
लोगों में एक भ्रांति है कि पैरालिसिस बुजुर्गों में होता है या 60 साल के बाद होता है, पर ऐसा नहीं है। अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पैरालिसिस यंग एज में भी होता है, या जो मैंने एम्बोलिज्म वाली या क्लॉटिंग वाली बात कही, देखो बुखार तो एक छोटे से बच्चे को भी हो सकता है
जी,
10 साल के बच्चे को भी अगर 106 बुखार है और उसका ब्लड क्लॉट हो गया है, या एक 8 साल का बच्चा है उसको इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि वो कीटाणु ही क्लॉट बना देते हैं, बैक्टीरिया जो है उन्होंने क्लॉट बना दिया
जी।
तो देखो एज इज ऑफ नो वैल्यू, इट कैन हैपन टू अ 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड इट कैन हैपन टू अ 50 ईयर ओल्ड मेल
जी जी।
तो क्लॉटिंग या जहां भी इस तरह की बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, सेप्टिसीमिया है, बैक्टीरीमिया है, कई लोगों को वायरस इतना ज्यादा हो जाता है, यही जुकाम जो है
जी जी,
दिस जुकाम कैन टेक योर लाइफ, ये जो वायरस है इतना ज्यादा हो जाता है ब्लड में कि ये एक गांठ बना देते हैं
जी।
और एक यंग एडल्ट 25 ईयर ओल्ड मेल कैन हैव अ पैरालिटिक अटैक। कई बार हम लोग टेम्परेचर्स में जाते हैं, जैसे माइनस टेम्परेचर में चले गए या फ्रीजिंग ठंड में चले जाते हैं
जी जी।
तो हमारी आर्टरीज क्लॉट हो जाती हैं, हमारा खून जम जाता है, और वही खून जो हमें जीवन देता है अगर हम प्रिकॉशन ना लें तो हमारा हाथ में क्लॉटिंग हो जाएगी
जी।
अब इसमें देखो एज की कोई वैल्यू नहीं है, इट कैन हैपन टू एनी यंगस्टर, कुछ हमारे बच्चे हैं जो सर्दी में बहुत प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, मैं उन बच्चों को समझाना चाहूँगा कि कई बार जैसे आप बस में चल रहे हैं, नैनीताल से बस में आए, विंडो के पास बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब फरीदाबाद में उतरे आप गर्मी में, तो आपके फेस की मसल्स में क्लॉटिंग हो जाएगी।
जी जी।
और कई मरीज आपने देखे होंगे जिनका मुंह टेढ़ा हो जाता है दीक्षा।
बिल्कुल जी जी।
या वो लोग हंसते हैं तो उनका मुंह एक तरफ को खींच जाता है।
जी जी।
इसको हमारी भाषा में बेल्स पैल्सी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस।
जी जी। फेशियल पैरालिसिस।
फेशियल पैरालिसिस।
जी जी।
सिर्फ क्यों हो गया कि हम बहुत हीरो बन रहे थे, बस में साइड में बैठेंगे, दरवाजे पे खड़े होंगे, ठंडी हवा का जो ब्लास्ट है वो सीधा मुंह पे लग रहा है, तो हम अपने आप को बड़ा तूफान समझने लगते हैं, लेकिन जब वही ठंडी हवा नीचे आके 40 डिग्री 45 डिग्री में आप रहे, तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती है टू द सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर।
जी जी।
ब्लड में क्लॉटिंग हो गया, आपका मुंह टेढ़ा हो गया, जिंदगी भर के लिए आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी।
जी जी जी।
और वो चीज़ कभी सही नहीं होती, सिर्फ इसलिए अगर वो बच्चा एक स्कार्फ पहन लेता या एक कैप पहन लेता, या हमारी लेडीज जिस तरह से चुन्नी लपेट लेती हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है। ये जो चुन्नी आप लोग पहनते हैं दीक्षा, ये हमारे कान को, हमारे फेस को सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर से बचाता है।
जी।
और मैं समझता हूँ कि भारतीय सभ्यता की ये एक महारत है, एक बहुत इंटेलिजेंट वे ऑफ ड्रेसिंग है कि धूप से और ठंडी हवा से और जो चिली विंड्स चलती हैं उनसे आपके फेस को ये चुन्नी बचाती है।
जी जी।
मेरे जो श्रोता हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस बात को समझें और सुनें कि ट्रेन में बाहर खड़े होना या बस के बाहर लटकना या ठंडी हवा में ब्लास्ट मुंह पर लेना, ये सब उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चों ये समझो कि अगर आपकी नर्व पैरालाइज हो गई, आपका कैरियर खराब हो जाएगा।
जी।
जिसका भी मुंह टेढ़ा हो गया एक बार दीक्षा, वो कभी सही नहीं होता है। ठीक है, वो 90% ठीक हो जाएगा या 95% ठीक हो जाएगा, 5% एरर फिर भी रह जाता है।
जी जी। यानी पूरी तरीके से अगर फेशियल पैरालिसिस हो जाता है तो वो 110% जैसे आप कह सकते हैं वो ठीक नहीं होता,
कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो रह ही जाते हैं। कई मरीज मेरे पास भी अभी आ रहे हैं जो प और फ नहीं बोल पाते हैं, या आपने अपने कार्यक्रमों में देखा होगा दीक्षा, कई लोग श बोलना होता है और स बोलते हैं।
जी जी।
तो क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता है, उनको पास्ट में फेशियल पैरालिसिस हुई है, उनका टंग मूवमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, और वो श को स बोलने लगते हैं।
जी जी।
एस को श बोलेंगे तो उनकी बोलने के तरीके में ये लगने लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है।
जी जी बिल्कुल।
पर्सन हु इज लुकिंग फॉर ए कैरियर, लाइक जैसे आपका कैरियर है डीजे का या रेडियो जॉकी का जो कैरियर है, ऐसा व्यक्ति तो आपके फील्ड में आ ही नहीं सकता।
बिल्कुल जी।
तो देखो, एक जरा से लापरवाही ने उसके कैरियर को खराब कर दिया।
बिल्कुल।
हमें ये चीज समझना चाहिए, और आज अगर आपके माध्यम से मैं 10 लोगों को भी ये समझा सकूं कि देखो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमें किस तरह से पैरालिसिस से, फेशियल पैरालिसिस से बचाते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए।
जी बिल्कुल। बातें चल रही हैं पैरालिसिस के बारे में, और आगे हम जानेंगे डॉक्टर के मिश्रा से कि किस किस तरीके की एहतियात बरतें ताकि पैरालिसिस किसी भी तरीके से आप तक ना पहुंच पाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और आप हैं मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ, और बातें चल रही हैं पैरालिसिस के बारे में, जिसके बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओल्ड फरीदाबाद के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने बताया कि खास तौर पर ठंडी हवा में अगर बहुत सारी यंगस्टर्स आपने देखे होंगे, जैसे हम लोग देखते हैं बस में खिड़की के पास बैठे रहते हैं, ट्रेन में खिड़की खोलकर बैठे रहते हैं, गाड़ी का शीशा खोलकर अक्सर सर्दी में ड्राइव करते हैं, तो वहां पर पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस किस तरीके की प्रिकॉशंस एक व्यक्ति को लेने चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी तरीके का कोई मरीज हो या फिर एक नॉर्मल आम यंगस्टर हो, ताकि वो पैरालिसिस से बच सके।
इसमें दीक्षा, अब हम शायद एल्डरली पैरालिसिस की बात करते हैं, जैसे जो बेसिक फंडा होता है पैरालिसिस में कि खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए।
जी जी।
अब अगर हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो लोग बहुत अंडे खाते हैं या पराठे खाते हैं, या हम लोग कई मरीज देखते हैं जो कि रोटी मक्खन के साथ ही खा सकते हैं, वो कहते हैं हमसे सूखी रोटी खाई नहीं जाती है।
जी जी बिल्कुल।
तो उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है।
जी।
गाढ़ा खून पतली नाड़ियों में से पास नहीं हो पाता है।
जी।
जैसे हमारे हाथ और पैर की नाड़ियां तो मोटी मोटी होती हैं, इनका 2 मिलीमीटर डायमीटर होता है।
जी।
लेकिन हमारी आंख की शिराएं बहुत पतली हैं।
जी।
हमारे कान की शिराएं less than 1 मिलीमीटर डायमीटर की होती है।
जी। जी, जी।
अगर उस कान की शिरा में या आँख की शिरा में थोड़ी सी भी कोलेस्ट्रॉल जम गई तो हमारी आई साइट ड्रॉप हो जाती है। 40 इयर्स की एज के बाद में क्यों आई साइट कम हो जाती है? इसीलिए हो जाती है कि उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कई लोगों को सुनाई देना कम हो जाता है दीक्षा इस उम्र में।
जी जी।
एक्चुअली इट इज ए पैरालिसिस ऑफ द ईयर ड्रम।
जी जी।
हम उसको किसी और तरीके से समझ सकते हैं, या आम आदमी सिर्फ हाथ और पैर जब नहीं उठता है तो उसी को पैरालिसिस मानता
है। जी जी जी।
लेकिन तुम ये सोचो अपने मन में, एक एग्जांपल लो, अगर मेरी आई लिड ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो ये भी तो पैरालिसिस
है।
पैरालिसिस ऑफ द आई लिड। अभी मैंने फेशियल पैरालिसिस का उदाहरण दिया कि उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो हंसता है तो बाईं तरफ उसका मुंह चला जाता है, फेशियल पैरालिसिस। तो ये जरूरी नहीं है कि हाथ और पैर ना उठे तभी पैरालिसिस है। पैरालिसिस ऑफ द लिप्स, आप कुछ बोलेंगे और कोई लफ्ज और निकलेगा।
जी जी बिल्कुल।
आप दूध पिएंगे और एक तरफ से दूध गिरने लगेगा।
जी।
तो ये सब पैरालिसिस हैं और हमें इन सब से प्रिकॉशंस रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें शुगर नहीं होनी चाहिए। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी शुगर लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखिए। कई मरीज़ हैं दीक्षा, उनको हम कहते हैं कि तुम्हारी शुगर ज़्यादा है, पेशेंट तुरंत कहता है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप क्यों कहते हैं जी इसके लिए।
जी जी।
लेकिन वो ये नहीं समझता कि शुगर जब ज़्यादा होती है तो खून गाढ़ा हो जाएगा।
जी।
और किसी भी नाड़ी को वो ब्लॉक कर देगा, जैसे ही नाड़ी ब्लॉक होगी उसको पैरालाइज हो जाएगा। सिर्फ हाथ और पैर का नहीं होगा, कईयों को हम देखते हैं दीक्षा जिनके वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है।
बिल्कुल।
वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज भर्राई हुई निकलती है।
जी जी जी।
वो कहते हैं जी मैं हाई पिच पर नहीं बोल सकता हूँ। व्हाट इज दिस? पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड।
जी जी।
सो यू सी यू आर रूइनिंग योर कैरियर। एक डॉक्टर अगर बोल ना पाए, रेडियो जॉकी अगर अच्छे से बात ना कर पाए, तो वो क्या रेडियो जॉकी बनेगा?
बिल्कुल जी।
इसी तरह मेरे जो बच्चे हैं, मेरे श्रोता जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो अपने लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर बच्चों आप लोग अपने हाथों से पैरों से 12 घंटे 14 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी सीट पे अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हों, आप जब मरीज के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो आप जब पैरालाइज होके बैठे रहेंगे, आपके गले से आवाज नहीं निकल रही है, तो आप क्या मरीज को ठीक करेंगे?
बिल्कुल।
तो हमेशा ये सोचिएगा कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम रखिए, चिकनाई नहीं खाइए, मक्खन घी बटर पराठा कभी खा लिया करिए, संडे के दिन खाया करिए, वरना 6 दिन सूखी रोटी खाइए। थोड़ी सी एक्सरसाइज दीक्षा जरूर करनी चाहिए।
जी जी।
आजकल जितनी भी रिसर्च आ रही है वो सब कहते हैं 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सर्शन कीप्स योर ब्लड सर्कुलेशन गोइंग।
जी।
गोइंग का अर्थ है कि वो पूरा सर्कुलेट करता है। जितना खून का दौरा अच्छे से सर्कुलेट करेगा, गुर्दे में से पास होगा, हमारी किडनीज उस ब्लड को फिल्टर करती हैं और अगले दिन आपको एक नया ताज़ा खून देती हैं। वो ऊर्जा, वो एनर्जी देती हैं कि आप 14 घंटे काम कर सकें।
बिल्कुल।
तो फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दीज आर द सक्सेस टू अवॉइडिंग पैरालिसिस इन फ्यूचर।
जी बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ, बातें चल रही हैं फिलहाल आप ही की सेहत के बारे में और आज का टॉपिक है पैरालिसिस, जिसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओल्ड फरीदाबाद के जाने माने सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के मिश्रा। तो डॉक्टर मिश्रा, बहुत सारी जानकारी हमने आपसे ली है पैरालिसिस से किस तरीके से बचा जाए, लेकिन अगर एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, चाहे वो फेशियल हो, चाहे ईयर ड्रम का पैरालिसिस हो, चाहे वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस की बात करें, या फिर हाथ या पैर में अगर उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, तो उस समय क्या करना चाहिए और इसका सही इलाज कितना संभव है, क्या इसका इलाज है, क्या पैरालिसिस ठीक हो सकता है या नहीं?
दीक्षा, इसका इलाज है, बहुत अच्छा है। इतनी सारी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, इतने रिसर्च हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं, हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर पेशेंट समय रहते हमारे पास पहुंच जाए और उसके मन में ये हौसला हो कि हाँ मैं अच्छा हो जाऊँगा, तो आप यकीन मानिए कि 90% पैरालिसिस के केसेस आजकल अच्छे हो जाते हैं।
जी।
उसका तरीका यही है, करेक्ट डायग्नोसिस होनी चाहिए। अगर हमारे को सीटी स्कैन करना है, अगर हमारी नाड़ी सिकुड़ गई है, आजकल एक तरीका है जिसको स्टेंटिंग बोलते हैं।
जी, जी।
आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि स्टेंटिंग सिर्फ हार्ट में होती
हो सकती है। जी जी।
ऐसा नहीं है साथियों, अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि मान लो जो नाड़ी हार्ट से ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसको हमारी भाषा में कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। कैरोटिड आर्टरी वो मुख्य नाड़ी है दीक्षा, जो ब्रेन को ब्लड ले जाती है। अगर उसमें क्लॉट बन जाता है, अगर उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग भी होती है, और अगर उस पेशेंट को तुरंत स्टेंटिंग कर दी जाए तो वो 100% ठीक हो जाता है।
जी जी,
जो फेशियल पैरालिसिस की मैंने बात करी, अगर विद इन 12 आवर्स वो पेशेंट डॉक्टर के पास मेडिकल एड ले लेता है तो 95% फेशियल पैरालिसिस ठीक हो जाती है।
जी
ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसको रह जाएगा, लेकिन हम उस पैरालिसिस को बढ़ने से बचा सकते हैं।
जी जी,
उसको और सीवियरिटी से बचा सकते हैं। सिर्फ आपकी आँख तक इन्वॉल्वमेंट होगा और उसको रोका जा सकता है, लेकिन तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल एड लीजिए। जो नीम हकीम खतरा जान लोग हैं उनके पास न जाइए, वो लोग ये चीजें दीक्षा समझ ही नहीं सकते।
जी,
जो आम डॉक्टर्स यहाँ ऐसे अनक्वालिफाइड लोग हैं, वो लोग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये समझते ही नहीं है।
जी जी,
आपकी जान इतनी कीमती है, ईश्वर ने ये हमें नियामत दी है दीक्षा, इसको अनक्वालिफाइड लोगों के हाथ में मत दीजिए। योर लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी वेस्टेड ऑन अनक्वालिफाइड पीपल। अपने श्रोताओं को आज मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी, अपनी कीमती जिंदगी अनक्वालिफाइड लोगों के हाथों में मत दीजिए।
जी बिल्कुल, तो डॉक्टर मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और पैरालिसिस के बारे में आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक आम आदमी तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू दीक्षा।
तो बहुत सारी बातें पैरालिसिस के बारे में तो हमने कर ली है, फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत और एंजॉय कीजिए बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम और बहुत ही खूबसूरत से गाने, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।